हम सभी मीठे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। हम आप आत्माओं का यही लक्ष्य है कि बाप के बताए हुए डायरेक्शन के प्रमाण स्वयं को चलाते हुए बाप के समान बन जाएं। जैसा बाप है वैसे हम बच्चे भी बन जाएं। कैसे बन सकते हैं? वो बाप दादा रोज मुरली में सुनाता है। तो बाप समान बनना अर्थात संगम युग का लक्ष्य है, दोनों बाप के समान बनना। शिव बाप के समान कर्मातीत बनना, ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता बनना। तो दोनों बाप के समान बनना है। समान बनने के लिए बाबा जो युक्ति बता रहा है उस युक्ति पर संपूर्ण रीति से स्वयं को चलाना है। समान बनना अर्थात जैसा बाप है वैसे उसी स्वरूप में स्थित होना। बाप हर बात में स्वरूप में स्थित है, सदा है ही है। जैसे बाबा शांति का सागर है, हम आत्माएं कभी हैं कभी बनने के पुरुषार्थी हैं, लेकिन जब आत्मा भी बाप जैसे एक समान अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे गुणों के चाहे शक्तियों के, मतलब बाप समान के स्वरूप में स्थित रहे। समान में दो चीज है, एक है स्थिति, एक है स्वरूप। स्वरूप अर्थात एक है फरिश्ता का कार्ब और एक है फरिश्ता की स्थिति। अर्थात यह शरीर लाइट का है, लाइट के शरीर के बीच में मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। तो स्वरूप भी और स्थिति भी। ऐसे शिव बाप जैसे है वैसे आप आत्मा भी बनो। तो सदा एक समान बने रहें, इसको कहा जाता है समान स्थिति, अप डाउन नहीं। तो समान बनने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है मनन, दूसरा है चिंतन, तीसरा है मंथन, चौथा है स्मरण, पांचवा है स्मृति, फिर छठा है स्वरूप। इन छह बातों पर अगर आत्मा पूरा पुरुषार्थ कर ले, अपने को टिका ले, तो वो बाप समान बन सकती है। पहली बात है मनन। मनन से क्या मिलता है, मंथन से क्या मिलता है, चिंतन से क्या मिलता है, इसको भी स्मृति में लाओ। जितना मनन करेंगे उतना ज्ञान योग धारणा सेवा जो भी है वो अच्छी लगेगी, करने का मन कहेगा। तो मनन से अच्छा लगता है, चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते। चिंतन करने से व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते, मंथन करने से अनमोल रतन प्राप्त होते। अनमोल रतन चाहे गुणों के, शक्तियों के, या ज्ञान के गुह पॉइंट के, अनमोल रतन प्राप्त होते। सिमरण से सुख मिलता है, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। स्मृति से समर्थी आती है, जितना स्मृति उतना समर्थी, और स्वरूप से समान बन जाते। स्वरूप से समान बनते। तो अब आप देखें कि क्या इन सब बातों के द्वारा मुझ आत्मा को प्राप्ति हो रही है या नहीं। जैसे पहली बात है मनन, आपका मनन तब चलेगा किसी भी बात पर, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा। आपका मनन तब चलेगा जब वो बात आपको अच्छी लगेगी। जब अच्छी लगती है तब उस पर मन चलता है। जैसे देखो, आप बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते समय हर एक को अनुभव होगा कि किसी दिन मुरली बहुत अच्छी लगती है सुनने का, उस दिन फिर मुरली पर चिंतन चलता रहता है। तो किसी दिन मुरली अच्छी लगती है, किसी दिन नहीं अच्छी लगती है, सुनने का मन नहीं कहता है, जबरदस्ती बैठना पड़ता है, नहीं क्लास से उठ नहीं सकते, बहन जी क्या कहेंगी, सुनना ही पड़ता है। लेकिन आपको सदा अच्छा लगे उसकी विधि है, मन को सदा अच्छा लगे उसकी विधि है मन मना भाव होकर रहे। मन मन मना भाव होकर रहे। अगर मन में बाबा की याद समाई है तो आपको मुरली भी अच्छी लगेगी और उसमें जो बाप दादा पॉइंट दे रहा है, चाहे धारणा के लिए, चाहे सेवा के लिए, चाहे ज्ञान के प्रति, वो आपको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो उसको करने का मन कहेगा, प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ चल सकेगा। तो आपका मन बाबा में लगा रहे, निरंतर आप आत्मा मन मना भाव की स्टेज में रहें, उसकी विधि है कि सदा आत्मक स्वरूप में स्वयं को टिका के रखो। जब तक स्वयं को आत्मक स्वरूप में टिका कर रखेंगे, उतनी देर बाबा की याद अवश्य रहेगी। आत्मा का संसार परम आत्मा है। इस शरीर का संसार ये दुनिया है, लेकिन आत्मा का संसार परम आत्मा है। लेकिन हम सब आत्मक स्वरूप में रह नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? आप सब अनुभवी हैं, जब से ज्ञान में चले हैं, जितना समय हुआ होगा, यह पाठ पक्का कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। जो पुराने होंगे थोड़े, मेरे समझ से अब तक अपने मन में या मुख से करोड़ों बार तो सोच चुके होंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इतना सोचने के बावजूद भी आत्मक स्वरूप में क्यों नहीं टिक पाए? इतना अभ्यास करने के बाद, क्योंकि बिना आत्मक स्वरूप के बाबा याद आएगा ही नहीं, कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं। तो इतने समय सोचने के बाद भी आत्मक स्वरूप में क्यों नहीं टिक पाए, इसका मुख्य कारण है जो आत्मा की चार स्टेजेस हैं, जब तक उन चारों स्टेजेस में आप अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं रटते रहो, हो नहीं सकता है। जब तक वो चारों स्टेज में स्वयं को नहीं लाएंगे, तब तक वो चारों स्टेज कौन सी है? आप मुरली में सुनते हैं लेकिन अटेंशन नहीं दिया होगा। वो चारों स्टेज है देही अभिमानी, पहली बात। दूसरी बात आत्म अभिमानी। तीसरी बात है विदेही। और चौथी बात है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। क्या समझते हैं? चारों एक ही है या अलग अलग है? पांडव क्या समझते हैं? शक्तियां देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक स्वयं को आत्मक स्वरूप में टिका नहीं पाएंगे। पहली बात है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात काम काज करते हुए आत्मा इन कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराए। देखो इसमें थोड़ी समझने की चीज है। एक है आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराए, एक है आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करे। एक है कर्म करे, जैसे ये गिलास है पानी का, इसे उठाना है, तो एक है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रिय अर्थात हाथ के द्वारा इस गिलास को उठाती हूं। मैं आत्मा हाथ के द्वारा इस गिलास को उठा रही हूं। एक है मैं आत्मा इस हाथ को ऑर्डर देती हूं इस गिलास को उठाओ। आप ये कल अभ्यास करके देखो, कल नहीं अभी अभ्यास करके देखो, आपको आत्मक स्वरूप टिकने में कितना सहज महसूस होगा। जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हैं, क्लास सुनते समय एक आपकी स्टेज है कि मैं आत्मा कानों के द्वारा क्लास सुन रही हूं। एक है मालिक बनो, मैं आत्मा इस कान को ऑर्डर देती हूं क्लास सुनो। तो जहां मालिकपन आता है वहां मालिकपन की स्थिति स्वरूप बना देती। हम मालिकपन को नहीं यूज कर रहे। आप बार बार ये अभ्यास करके देखो, कोई भी कर्म करो तुरंत ये संकल्प लाओ कि मैं आत्मा इस इंद्री को ऑर्डर दे रही हूं, इस इंद्री को ऑर्डर दे रही हूं। कर्म करने के पहले यह स्मृति आए कि मैं आत्मा हूं, फिर मालिक बनकर ऑर्डर दे रही हूं इन कर्म इंद्रियों को। जब आप कर्म क्षेत्र पर कभी आप बन जाओ करावन हार बनकर कराओ, और कभी करण हार बनकर करो, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही हूं, करण हार बनो, और कभी मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा करा रही हूं, करावन हार बनो। जब करण करावन हार दोनों रूप का अभ्यास करते रहोगे तब आपको आत्मक स्वरूप के टिकने में मदद मिलेगी। ऐसे मैं आत्मा हूं कितना भी रटो सहज नहीं हो पाएगा। तो पहली बात है देही अभिमानी, देह में रहते हुए देह के द्वारा कर्म कराते हुए करण करावन हार बनकर कर्म कराओ, ज्यादा समय प्रयोग करो करावन हार का, करण हार का कम। करण हार में इसका भान आ सकता है, करावन हार में इसका मालिक हूं, मालिक बन करके करा रही हूं। तो मालिक और जिससे करा रही हूं स्वतः ही दो हो जाते, अलग हो जाते, तो न्यारेपन का अनुभव हो जाएगा। फिर कर्म करते हुए देही अभिमानी बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात। दूसरी बात है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप आत्मा बाबा की याद में बैठते हो, जब याद में बैठते हो उस समय आप इस देह को भूलते हो और आत्मा का भान पक्का करते हो। बैठने के समय इस देह को भूलते हो और आत्मा का भान पक्का करते हो कि मैं हूं ही आत्मा। तो जब हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय आत्म अभिमानी की स्थिति में बैठते, आत्म भान को पक्का करते। आत्म भान को पक्का करने के लिए विशेष हमें जितना ज्यादा हम इस शरीर के भान से स्वयं को न्यारे बनाएंगे उतना आत्म भान को हम पक्का कर पाएंगे। तो योग में जब बैठो तो टोटल देह के सर्व संबंध से न्यारे, इतनी वैराग्य वृत्ति चाहिए कि ये सब खत्म हुआ पड़ा है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, ये गया की गया, ये जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूं, अविनाशी हूं, भगवान का बच्चा हूं, मुझ आत्मा को भगवान से वर्षा लेना ही है। जितना ये उस समय पक्का करते जाओगे उतना आत्मा का भान पक्का होता जाएगा, क्योंकि जैसे आत्मक स्वरूप में टिकने का संकल्प करते हो तो पुराने संस्कार पुराने हिसाब किताब विघन डालते हैं, जो आज की मुरली में भी था। लेकिन उस सब को काटने की विधि, आज तो बाबा ने कहा रात को जाग कर याद करो, लेकिन उस समय वो विघन ना डाले, उसका आधार है वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट दो और कोई संकल्प नहीं आने दो। सब खत्म हो जाने वाला है, सब खत्म हो जाने वाला है। मैं आत्मा नंगी आई थी, नंगी जाऊंगी, ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैं टोटल आत्मक स्वरूप में ही टिक कर जाऊंगी। इतना आत्मा का भान पक्का करो। जैसे शरीर है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, बस सिर्फ मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मेरा बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जब यह अभ्यास बढ़ाओ तब आत्मा का भान पक्का होता जाए। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात काम काज करते हुए चलते फिरते उठते बैठते सोमान में रहना, सोमान में रहकर चलना, सोमान में रहकर बोलना, सोमान में रहकर खाना पीना, तो विदेही बनने का आधार है सोमान में रहना। सोमान देह के भान को भुला देता है। सोमान हमारे पुराने संस्कारों को बदल देता है। दृष्टि वृत्ति कृति सब को चेंज कर देता है। जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा को सदा ये स्मृति रहती थी, बाबा सदा इस सोमान में रहता था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, इसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के स्मृति से दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल गई। वो अपनी पत्नी जसोदा को बेटी कहता था, बेटी जसोदा या जसोदा बेटी। क्यों? ये भान था, सोमान में रहता था कि मैं प्रजापिता हूं। तो इस सोमान में रहने के कारण पत्नी पत्नी नहीं दिखी, लेकिन बेटी दिखाई पड़ी, बेटी है। और उधर पत्नी को ये बाबा का वाइब्रेशंस, उसने भी तुरंत बाबा को बाप कहा, बाबा है। पति भाव खत्म हो गया, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है। आप सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अपने इस सोमान में रहो, हम ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी हैं। अगर आप इस सोमान में रहो तो परिवार में रहते हुए आपके अंदर की स्थिति बदल जाएगी। मुंह से तो बाहर जैसा है वैसे व्यवहार करेंगे, पत्नी को पत्नी कहेंगे बाहर से, लेकिन अंदर पता है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ये भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी भगवान की संतान है, मेरा भाई है या मेरी बहन है। जितना अंदर की स्थिति बदलती जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदल गई तो कृति भी बदल जाएगी, कर्म भी बदल जाएगा। अगर आप सोमान में रहते हैं तो सोमान श्रेष्ठ कर्म स्वतः कराएगा, सोमान स्वतः ऊंची स्थिति में स्थित रखेगा, सोमान देह भान से मुक्त करेगा, देह में होते हुए देह भान से मुक्त होना, इसी को विदेही कहा गया है। जैसे राजा जनक के लिए बताते थे, था वो भी राजा लेकिन विदेही कहलाता था, कारण वो देह में रहते हुए लेकिन हर समय वो भगवान की याद में रहता था। इस दुनिया में जैसे रहता ही नहीं था लेकिन न्यारा था, इस कारण उसको विदेही कहते थे। तो विदेही अर्थात उठते बैठते चलते खाते पीते सदा सोमान में रहकर चलना। चौथा है अशरीरी। अशरीरी अर्थात जब आत्मा परम धाम में है तो वहां शरीर के बिना है, शरीर वहां नहीं है। यह अभ्यास आपको योग में अवश्य करना है कि मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हूं, जहां ना शरीर है ना शरीर से संबंधित कोई चीज है, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, जिसको बाबा कहता है डेड साइलेंस, बस आप आत्मा और परमात्मा। परम धाम में टिकने का अभ्यास करो, परम धाम में बैठने का अभ्यास करो। जब आप परम धाम में बाबा के पास बैठ सकेंगे तब अशरीरी होने का अभ्यास कर पाएंगे। अंत में तो हमको अशरीरी हो करके बाबा के पास जाना ही है, शरीर तो जाएगा ही नहीं। उसका अभ्यास अभी करो। तो जब ये चार बातों का अभ्यास कर लो, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, तब आप आत्म भान पक्का कर सकते हो, तब आत्मक स्वरूप में स्वयं को टिका सकते हो। और जब आत्मक स्वरूप में टिक जाओ फिर परमात्मा की याद निरंतर स्थित हो जाएगी। और जब परमात्मा की याद स्थिर हो गई फिर तो हर बात अच्छी लगेगी। क्यों? बुद्धि दिव्य बन जाएगी। बुद्धि दिव्य है तो दिव्य बातें अच्छी लगती है। भगवानों वाच हर बातें दिव्य हैं, क्योंकि दिव्यता का दाता दिव्य बुद्धि विदाता सुना रहा है। दूसरी बात है चिंतन। जब कोई चीज अच्छी लग जाती है तो उस पर चिंतन अपने आप चलता है। अच्छा लगने के बाद चिंतन चलने लगता है, और जितना चिंतन चलता है उस बात पर तो दूसरे बात से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। तो व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहें उसके लिए शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, सोचिंतन बन के रहे। सोचिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, फिर आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। सो के बारे में चिंतन करें, शुभ अर्थात श्रेष्ठ चिंतन करें, और दूसरों के लिए शुभ अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करें। सोचिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये तीन स्थिति लाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। और जितना व्यर्थ से मुक्त होते जाओगे उतना श्रेष्ठ चिंतन चलता रहेगा, चाहे ज्ञान के बारे में, चाहे योग के बारे में, चाहे धारणा पर, चाहे सेवा पर। कई बाबा के बच्चे ऐसा कहते हैं कि मेरा चिंतन नहीं चलता है। नहीं चलता है कारण व्यर्थ है, व्यर्थ है इसलिए समर्थ चिंतन चलने नहीं देता है। लेकिन आप इस विधि को अपनाओ तो आपका चिंतन अवश्य चलेगा। तीसरी बात है मंथन। मंथन अर्थात विचार सागर मंथन। मंथन करो तो रतन मिलेगा। मंथन करने का आधार है, आपका मंथन तब चलेगा जब आप अंतर्मुखी होंगे। तब बिना अंतर्मुखता के, बिना गहराई में गए आपका मंथन चलेगा नहीं। मंथन अर्थात नई पाइप निकालना। जैसे दूध पिलोते हैं दही तो मक्खन निकलता है, मंथन किया तो मक्खन निकला। ऐसे जब आप अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे, सागर के तले में रतन होता है, नीचे रतन होता है, तो जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना ज्ञान के, योग के, शक्तियों के गहराई में जा सकेंगे। ऊपर ऊपर से वर्णन करने से रतन नहीं मिलते, ऊपर ऊपर से सोचने से उस शब्द का अर्थ नहीं कैच कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आप ये मुरली में सुनते हैं और बाबा कहता है कि मैं आप बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं और इस राजयोग से आप बच्चे ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति करते हो। बाबा कहता है राजयोग से ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति है। राजयोग सीख रहे हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण जब राजयोग सीख करके पूरा करेंगे तब आप क्या बनेंगे? शरीर छोड़कर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे ना, जाकर देवता बनेंगे ना। तो ब्राह्मण राजयोग सीख कर देवता बने, तो ब्राह्मण बड़े हैं या देवता बड़े हैं? कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़े हैं ना। तो राजयोग सीख करके आप नीचे गए या ऊपर गए? देवता तो आपसे छोटे हैं, बड़े तो ब्राह्मण हैं। देवताएं सोने तुल्य हैं, ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो इस राजयोग से ऊंचते ऊंच प्राप्ति कहां से हुई? अब शब्द तो आप सुन लेते हो मुरली में, लेकिन कभी सोचा? ब्राह्मण से देवताओं की डिग्री कम है, ब्राह्मण राजयोग सीखकर देवता बने, हीरे तुल्य से सोने तुल्य हो गए। तो ऊंच पद की प्राप्ति तो नहीं हुई ना, लेकिन जब भगवान कहता है तो प्राप्ति है, है प्राप्ति, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे कि क्या कारण है जो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि ऊंचते ऊंच पद की प्राप्ति किस रूप से बाबा देता है? जब ब्राह्मण आत्माएं ये शरीर छोड़ती हैं, राजयोग सीख कर पूरा करती हैं, जब शरीर छोड़ती हैं परम धाम में जाती हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं परम धाम में भगवान के बिल्कुल समीप रहती, भगवान के बिल्कुल पास में रहती है। ये सिवाय ब्राह्मण आत्मा के और कोई भी आत्मा, धर्म पिता भी भगवान के समीप नहीं जा सकती, भगवान के समीप नहीं रह सकती। तो ये है ऊंचते ऊंच प्राप्ति कि भगवान के समीप जाती रहती। आप ये जानते थे, लेकिन भगवान ऊंचते ऊंच प्राप्ति कराता है इस रूप से नहीं जानते थे, बाकी जानते थे ये बात। तो ये जो बाबा इशारा देता है कि आप विचार सागर मंथन करो तो रतन निकलेंगे, ये मंथन करने के लिए अंतर्मुखता बहुत आवश्यक। अंतर्मुखी कहा ही गया है, अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी, सिर्फ सुखी नहीं अति इंद्रिय सुखी। बाहर के सब बातों से फ्री हो जाएगा। मेरा तेरा व्यर्थ संकल्प जो भी है सबसे मुक्त हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। बस बाबा और वो आत्मा बचेगी। इसके बाद है सिमरण। सिमरण के लिए कहा गया है, सिमिर सिमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। सिमरण का आधार है बाप के साथ सर्व संबंध, भगवान के साथ सर्व संबंध से उसे याद करो, क्योंकि सर्व संबंध के आधार से सर्व प्राप्तियां हैं। जो संगम युग पर भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ता है, सर्व संबंधों से याद करता है, वो सर्व गुण संपन्न बन जाता है। बाबा ने मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते हैं बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, ये बड़ा संबंध रखना तो अच्छा है, लेकिन बाबा नाती है, पोत्रा है, बहू है, सास है, कोई भी, ये संबंध रखना भगवान के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है। लेकिन बाबा ने कहा, अगर बाप के साथ सर्व संबंध नहीं, एक कोई छोटा संबंध भी आत्मा के साथ रखा तो सर्व संबंध से सर्व शब्द कट जाएगा, सिर्फ संबंध बचेगा। और इधर प्राप्ति में सर्व गुण संपन्न के बजाय सर्व शब्द कट जाएगा, सिर्फ गुण संपन्न बनोगे, अर्थात त्रेता युग में आ जाओगे। तो सर्व संबंध से सर्व प्राप्तियां हैं, और सर्व प्राप्तियों के आधार से सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंध रखो, सर्व संबंधों का सुख लो, सर्व संबंधों से प्राप्ति करो, फिर आत्मा सदा सुख में नाचती रहेगी। चौथी बात है, पांचवी बात, स्मृति। स्मृति से समर्थि आती है। स्मृति लाने का आधार है। स्मृति आपको बाबा की तब आती रहेगी जब एक तो बाबा के साथ सच्चे दिल का प्यार होगा, और दूसरा समय की समीप की स्मृति रहेगी कि ये मेरा श्वास अंतिम श्वास है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो सच्चे दिल का प्यार और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जो अपनी मीठी मम्मा का स्लोगन था। हर श्वास अंतिम श्वास है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और भगवान से सच्चे दिल का प्यार। तो सच्चे दिल का प्यार और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये स्मृति भगवान की स्मृति दिलाती रहेगी, और जितना स्मृति है उतना आत्मा समर्थ बनती जाएगी। और लास्ट है स्वरूप। जब आप स्वयं को भगवान के स्वरूप में स्थित कर लेंगे, अगर इन सभी बातों का आप एक्यूरेट अभ्यास कर लिया तो स्वरूप अवश्य बन जाएंगे। अगर स्वरूप बन गए, स्वरूप अर्थात सदा काल के लिए वो चीज बन जाना, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांत स्वरूप सदा रहे उसको कहा जाता है स्वरूप बन जाना। तो ऐसे स्वरूप बनी हुई आत्मा भगवान के समान स्वतः बन जाएगी। ये है बाप के समान बनने की विधि। अच्छा, ओम शांति।